अध्याय 14। एक दूसरे से जी जान से प्यार करो, साथ ही तुम परमेश्वर से मिलने वाले वरदान पाने की कोशिश करते रहो, खासकर भविष्यवाणी करने का वरदान। जो दूसरी भाषा बोलता है वो इंसानों से नहीं बल्कि परमेश्वर से बात करता है, क्योंकि वो पवित्र शक्ति के जरिए पवित्र रहस्य बताता तो है मगर कोई समझता नहीं। लेकिन जो भविष्यवाणी करता है वो अपनी बातों से लोगों को मजबूत करता है, उनकी हिम्मत बंधाता है और उन्हें दिलासा देता है। जो दूसरी भाषा बोलता है वो सिर्फ खुद को मजबूत करता है, मगर जो भविष्यवाणी करता है वो मंडली को मजबूत करता है। मैं चाहता तो ये हूं कि तुम सब दूसरी भाषाएं बोलो, मगर मेरे हिसाब से बेहतर ये होगा कि तुम भविष्यवाणी करो। दरअसल भविष्यवाणी करने वाला दूसरी भाषाएं बोलने वाले से कहीं बढ़कर है, क्योंकि दूसरी भाषाएं बोलने वाला अगर अपनी बातों का अनुवाद करके न समझाए तो उसकी बातों से मंडली मजबूत नहीं होगी। मगर भाइयों, अगर मैं इस वक्त तुम्हारे पास आकर दूसरी भाषाएं बोलूं मगर परमेश्वर का दिया संदेश न सुनाऊं, या तुम्हें ज्ञान न दूं, या भविष्यवाणी न सुनाऊं, या कोई शिक्षा न दूं, तो क्या इससे तुम्हारा भला होगा? ये ऐसा होगा मानो बांसुरी या सुरमंडल जैसे साज बजाए जा रहे हों मगर उनके सुर तान में कोई अंतर न हो। ऐसे में यह कैसे मालूम पड़ेगा कि बांसुरी या सुरमंडल पर कौन सी धुन बज रही है? अगर तुरही की पुकार साफ न हो तो लड़ाई के लिए कौन तैयार होगा? उसी तरह अगर तुम अपनी जबान से ऐसी बोली न बोलो जो आसानी से समझ आए तो तुम्हारी बात कौन समझेगा? तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। दुनिया में चाहे कितनी ही बोलियां क्यों न हो मगर एक भी बोली ऐसी नहीं जिसका कोई मतलब न हो। अगर मैं एक आदमी की बोली नहीं समझता तो मैं उसके लिए एक विदेशी जैसा हूं और वो भी मेरे लिए विदेशी जैसा है। तुम भी जो पवित्र शक्ति के वरदान पाने की जबरदस्त इच्छा रखते हो, इन्हें बहुतायत में पाने की कोशिश करो ताकि मंडली मजबूत हो सके। इसलिए जो दूसरी भाषा में बात करता है वो प्रार्थना करे कि वो उसका अनुवाद करके समझा सके, क्योंकि अगर मैं दूसरी भाषा में प्रार्थना कर रहा हूं तो मैं पवित्र शक्ति का वरदान पाने की वजह से प्रार्थना कर रहा हूं मगर मेरा दिमाग उसे नहीं समझता। तो फिर क्या किया जाए? मैं पवित्र शक्ति का वरदान पाने की वजह से प्रार्थना करूंगा, पर साथ ही मैं अपने दिमाग से समझते हुए भी प्रार्थना करूंगा। मैं पवित्र शक्ति के वरदान की वजह से तारीफ के गीत गाऊंगा मगर मैं अपने दिमाग से समझते हुए भी इन्हें गाऊंगा। वरना अगर तू पवित्र शक्ति के वरदान की वजह से प्रार्थना में तारीफ करे तो तुम्हारे बीच जो आम इंसान है वो तेरी धन्यवाद की प्रार्थना के लिए आमीन कैसे कहेगा? उसे तो समझ ही नहीं आएगा कि तू क्या कह रहा है। हाँ, ये सच है कि तू बहुत बढ़िया तरीके से प्रार्थना में धन्यवाद देता है, मगर उस दूसरे इंसान को इससे फायदा नहीं होता। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे ज्यादा भाषाएं बोल सकता हूं, फिर भी मैं एक मंडली में दूसरी भाषा में 10,000 शब्द बोलने के बजाय अपने दिमाग से 5 ऐसे शब्द कहना पसंद करूंगा जो समझ में आते हैं, ताकि दूसरों को कुछ सिखा सकूं। भाइयों, सोचने समझने की काबिलियत में बच्चों जैसे नादान मत बनो, बल्कि बुराई के मामले में बच्चे रहो, और सोचने समझने की काबिलियत में सयाने बनो। कानून में लिखा है, यहोवा कहता है, मैं इन लोगों से विदेशियों की भाषाओं और अजनबियों की बोली में बात करूंगा, फिर भी वे मेरी बात पर ध्यान नहीं देंगे। इसलिए दूसरी भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं बल्कि अविश्वासियों के लिए एक निशानी है, जबकि भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं बल्कि विश्वास करने वालों के लिए है। इसलिए अगर सारी मंडली एक जगह इकट्ठा होती है और वे सभी दूसरी भाषाएं बोलते हैं, और अगर आम लोग या अविश्वासी अंदर आते हैं तो क्या वे ये नहीं कहेंगे कि तुम पागल हो? लेकिन अगर तुम सभी भविष्यवाणी करते हो और कोई अविश्वासी या आम इंसान अंदर आता है तो तुम सबकी बातों से उसका सुधार होगा और उसकी बारीकी से जांच होगी। उसके दिल में जो छिपा है उसका खुलासा हो जाएगा और वो मुंह के बल गिरकर ये कहते हुए परमेश्वर की उपासना करेगा, परमेश्वर सचमुच तुम्हारे बीच है। तो फिर भाइयों, क्या किया जाना चाहिए? जब तुम इकट्ठा होते हो तो किसी के पास परमेश्वर की तारीफ का गीत होता है, किसी के पास सिखाने का वरदान, किसी के पास परमेश्वर का संदेश होता है, किसी के पास दूसरी भाषा बोलने का वरदान, और किसी के पास उसका अनुवाद करके समझाने का वरदान होता है। सब कुछ एक दूसरे का हौसला बढ़ाने के लिए किया जाए। अगर दूसरी भाषा बोलने वाले हों तो ऐसे लोग ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 हों, और वे बारी बारी से बोलें और कोई अनुवाद करके उनकी बात समझाए। लेकिन अगर अनुवाद करके समझाने वाला कोई न हो तो वे मंडली में चुप रहें और मनी मन खुद से और परमेश्वर से बात करें। भविष्यवक्ताओं में से दो या तीन बोलें और दूसरे उनकी बातों का मतलब समझें। लेकिन अगर वहां बैठे हुए किसी और को परमेश्वर का कोई संदेश मिलता है तो जो बोल रहा है वो चुप हो जाए, इसलिए कि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो, ताकि सभी सीख सकें और सबकी हिम्मत बंधे। भविष्यवक्ताओं को पवित्र शक्ति से भविष्यवाणी करने का जो वरदान मिला है उस पर उन्हें काबू रखना है, इसलिए कि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं बल्कि शांति का परमेश्वर है। जैसे पवित्र जनों की सारी मंडलियों में होता है, वैसे ही मंडलियों में औरतें चुप रहें, क्योंकि उन्हें बोलने की इजाजत नहीं है। इसके बजाय वे अधीन रहें, ठीक जैसा कानून भी कहता है। अगर वे कुछ जानना चाहती हैं तो वे घर पर अपने अपने पति से सवाल करें, क्योंकि एक औरत का मंडली के सामने बोलना अपमान की बात है। क्या परमेश्वर के वचन की शुरुआत तुमसे हुई थी या ये सिर्फ तुम्हें ही मिला था? अगर कोई सोचता है कि वो एक भविष्यवक्ता है या उसे पवित्र शक्ति का वरदान मिला है, तो वह इस बात को स्वीकार करे कि जो मैं तुम्हें लिख रहा हूं वो प्रभु की आज्ञा है। लेकिन अगर कोई इन बातों को ठुकराता है तो उसे भी ठुकरा दिया जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, भविष्यवाणी करने में मेहनत करते रहो, पर साथ ही किसी को दूसरी भाषा बोलने से मत रोको, मगर सब बातें कायदे से और अच्छे इंतजाम के मुताबिक हों।